पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी और आर्यन के बीच गलतफहमी पैदा होती है और सानवी आर्यन का काम छोड़ देती है। वर्तमान अध्याय सुधीर और रुचिका की शादी के उत्सव के दौरान शुरू होता है, जहां एक वीडियो में वेद मेहरा को एक महिला के साथ शादी करते हुए दिखाया जाता है, जिससे बलवंत मेहरा हैरान हो जाते हैं। बलवंत गौतम को उस लड़की को लाने के लिए कहते हैं। बाद में मानवी और रीता अवनी के साथ कमरे में आते हैं। रीता बताती है कि वेद और मानवी की शादी हुई थी और अवनी वेद की बेटी है। बलवंत मानवी को अपनी पोती के रूप में स्वीकार करता है और अपनी कंपनी के शेयर मानवी और अवनी को देने का फैसला करता है। वेद मानवी पर बेटी को छुपाने का आरोप लगाता है, जबकि मानवी जवाब देती है कि वेद ने उसे छोड़ दिया था। वेद ने अचानक खड़े होकर कहा, ठीक है मानवी, इसमें कोई शक नहीं कि अवनी हमारी बेटी है, और जो भी पहले हुआ, अगर उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी तो पूरी शुरुआत तो मेरी भी नहीं थी। हम अपने बच्चों के लिए साथ रह सकते हैं। इतना सुनते ही अवनी दौड़कर वेद से लिपट गई। ये मेरे डैड हैं, अंकल नहीं। बलवंत मेहरा मुस्कुराते हुए पास आए। उन्होंने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे डैड का भी डैड हूँ। ये कहकर उन्होंने भी अपनी को गोद में उठा लिया। फिर प्यार से मानवी की तरफ देखकर बोले, देखो बेटा, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। अगर मेरे बेटे ने गुस्से और ज़िद में गलती की तो उसकी सज़ा तुम क्यों भुगतो? तुम इतनी सालों से अकेली इसे पाल रही हो, यह आसान नहीं था। अब तुम दोनों को अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे आने से पहले ही हम यही बात कर रहे थे। मानवी ने शक भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरे पास तो वेद की बेटी है, तो आपको ये बात सबसे पहले किसने बताई? बलवंत ने वेद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वेद ने बताया। अब तुम दोनों अपने दिल की सारी बातें साफ कर लो। मैं तुम्हें गुस्से से बुलाने नहीं आया था। मैं तो खुश हूं कि मेरी बहू और मेरी पोती मुझे मिल गई। आओ, अब इस रिश्ते को संभालो। बलवंत मेहरा ने वेद की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। सुधीर के साथ ही हम तुम्हारा और मानवी का रिसेप्शन कर देंगे। अब दुनिया जान जाएगी कि तुम हमारी बहू हो। तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिलेंगे। हैरान परेशान सी मानवी सब देख रही थी। जो कुछ हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। उसने अचानक रीता की तरफ देखा और झुंझलाहट से बोली, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि हम दोनों की बेटी है? फिर उसकी नज़र बलवंत पर गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी बेटी आपकी बेटी ही ना हो। हम तो इतने सालों से अलग हैं, कौन जानता है मेरे बारे में? बलवंत ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ये तुम देखो बेटा, कहने को तो आजकल डीएनए टेस्ट हो जाता है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अवनी मेरी ही मेरे बेटे की ही बेटी है। मैं तुम दोनों को किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम दोनों को तुम दोनों की मर्जी से होगा। हाँ, बस एक बार साथ रहने की कोशिश जरूर करके देख लो। अगर नहीं हुआ तो तलाक ले लेना, मगर मैं अपनी पोती को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे शायद अब जाकर पता चला है, मगर वेद ने अपने खून को पहले ही नज़र में पहचान लिया था। रीता के कहने से मुझे ये बात पता नहीं चली। इस कमरे में आने से पहले ही मुझे सब समझ आ चुका था। वो कुछ पल रुका और फिर सीधे वेद की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारी माँ को बुलाओ। मानवी ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आंटी जी को मैं और अवनी दोनों ही पसंद न आए। बलवंत ने गंभीर नज़र डालते हुए कहा, खुद ही देख लेना, मैं तुम्हारी वेदिका को बुलाता हूँ। उसने फ़ोन उठाकर किसी को वेदिका को भेजने के लिए कहा। तभी दरवाज़ा खुला और वेदिका कमरे में दाखिल हुई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सामने देखने लगी। सामने बेड पर बलवंत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसके चेहरे पर ज़रा भी तनाव नहीं था। उधर वेद अपनी बेटी अवनी को गोद में लिए खड़ा था। उसकी नज़र सीधे मानवी और रीता पर थी। धीरे से उसने पूछा, क्या हुआ? बलवंत ने सोफे पर टिकते हुए आराम से कहा, होना क्या है, संभालो अपनी पोती को और बहू को। जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया। वेदिका कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई। बलवंत ने फिर बात आगे बढ़ाई, इन दोनों ने शादी की थी 5 साल पहले, जब विदेश जाने से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर ये विदेश चला गया और ये लड़की मारी मारी फिर रही है। उसी वक्त से इसने तुम्हारे खून को जन्म दिया। क्या? वेदिका की आंखों में हैरानी थी। उसकी नज़र अपनी बच्ची पर टिक गई। वो तुरंत अवनी को गोद में लेने बढ़ा। वेदिका ने अवनी को गोद में उठाया। छोटी सी अवनी मासूम आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। मैं तुम्हारी दादी हूँ, वेदिका ने उसे सीने से लगाते हुए खुद से कहा। फिर वो मानवी के पास पहुंची। बेटा, शादी ऐसे नहीं टूटता, तुम दोनों आपस में समझौता कर लो इस बच्चे के लिए। वेदिका को थोड़ी बहुत बात अभी पता चली थी, मगर उसे मानवी को मनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। बलवंत ने मानवी से कहा, तुम्हारी सास ने तुम्हें अपना लिया, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मानवी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बलवंत तुरंत बोला, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। जहां हम आए हुए हैं वहां सभी गेस्ट, पूरा परिवार कमरे से हमें निकलने का इंतजार कर रहा है। हमें फैसला करके ही बाहर जाना होगा। उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई। एक बात फाइनल है, मैं अपनी पोती को नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों चाहे जो मर्जी करो, मुझे वेद से कोई मतलब नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, मगर याद रखना अवनी मेरी पोती है और मेरा वारिस। रीता ने मानवी का हाथ थामा और उसे कॉर्नर की ओर खींचते हुए बोली, तुम मेरी बात सुन। बलवंत ने इशारा किया, ऐसा करो तुम दोनों बाहर बालकनी में जाकर बात कर लो। मानवी और रीता धीरे धीरे बालकनी की ओर चली गईं। मानवी, तू शादी को मान ले, रीता ने कमरे से बाहर आते ही कहा। मानवी का चेहरा गुस्से और चोट से तमतमा उठा। इतने सालों तक उसने मेरी बेटी के बारे में बात तक नहीं की और आज अचानक बाप बनने चला है। ऐसे नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मेरी बेटी को छीनने की कोशिश की तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। रीता ने उसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम्हारी बेटी को अच्छी जिंदगी मिलती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो, शेखर से शादी करने के लिए तुम्हें मैंने ही कन्विंस किया था। कहीं तुम्हें शेखर से प्यार तो नहीं हो गया? मानवी की आंखों में चोट और गुस्सा साफ झलकने लगा। पागल हो गई हो क्या? मुझे किसी से प्यार नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा। रीता धीरे से बोली, तो फिर सोचो, अगर अवनी के पास पूरी फैमिली होगी, उसका खुद का पिता होगा, दादा दादी होंगे और इतने इतने करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम लग रही है, तो और क्या चाहिए? मेरी बात मानो, खुद के लिए नहीं तो अवनी के लिए शादी को कबूल कर लो। अगर नहीं बनी बात तो कल कोर्ट जाकर तलाक ले लेना। लेकिन याद रखना, इतनी आसानी से वो लोग अवनी को कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो इतने बड़े खानदान की बहू बनेगी। मानवी की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी के धन दौलत से लालच नहीं है, मगर अगर अवनी के पास फैमिली हो जाए तो हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अनाथ होना क्या होता है, ये दर्द मुझे भी पता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बुदबुदाई, वेद के साथ हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी रहे, मगर अवनी के लिए वो बहुत अच्छा पिता साबित होगा। रीता ने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। समझो मानवी, हाँ कह दो। वैसे भी उन लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अगर वो अवनी को लेना ले तो फिर हमारे पास उसे रोकने की ताकत नहीं होगी। मानवी की आंखें नीचे झुक गईं। उसका दिल बार बार कह रहा था कि वो झूठे रिश्ते को कबूल ना करे, मगर दिमाग बेटी के भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं और आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ।
पंडित जी ने सच कहा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन उस समय तुमने उनकी बात नहीं मानी। अब सच्चाई सामने आ ही गई ना। पंडित जी ने ये भी कहा था कि तुम्हारी जिंदगी की दो औरतें तुम्हें हर खतरे से बचाएंगी, और वही दो औरतें हैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी। अब इन्हें हम अपने साथ कर लेंगे, लेकिन अगर आगे कभी कोई शिकायत आई तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आप तो एकदम से पार्टी बदल गईं। आप तो अब मुझे धमकाने लगी हैं, और वो भी अपने ही बेटे को।